آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات 3 مرحلوں میں اگلے مہینے کی 18 تاریخ سے شروع ہوں گے۔ ہریانہ میں ایک ہی مرحلے میں 1 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔ مرکز نے 3 میٹرو پروجیکٹوں اور 2 نئے ایئرپورٹ سہولیات کی منظوری دی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری سرکار کے اعلی مشیر محمد یونس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم نے جمہوری، پرامن اور ترقی پسند بنگلہ دیش کے لیے بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کولکاتہ میں خاتون ڈاکٹر کی مبینہ عصمت دری اور قتل کے خلاف احتجاج کی وجہ سے ملک بھر کے بہت سے شہروں میں طبی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے اداروں کے سربراہوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے خلاف تشدد کے کیس میں 6 گھنٹے کے اندر ادارہ جاتی ایف آئی آر درج کرائیں۔ اور 2022 کے لیے قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ رشبھ شیٹی کو بہترین اداکار جبکہ نتھیا مینن اور مانسی پارے کو تمل اور گجراتی فلموں کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات 3 مرحلوں میں اگلے مہینے کی 18 تاریخ سے شروع ہوں گے، جبکہ ہریانہ میں ایک ہی مرحلے میں 1 اکتوبر کو ہوں گے۔ جموں کشمیر اور ہریانہ دونوں کے 90 ممبران پر مشتمل اسمبلی کے لیے ووٹوں کی گنتی 4 اکتوبر کو ہوگی۔ اعلی چناؤ کمشنر راجیو کمار نے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ جناب کمار نے کہا کہ جموں کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابات 18 ستمبر، دوسرے مرحلے کے انتخابات 25 ستمبر اور تیسرے اور آخری مرحلے کے انتخابات 1 اکتوبر کو ہوں گے۔ مرکزی کابینہ نے ملک میں 3 نئے میٹرو ریل پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ ان میں بنگلور میٹرو کا 15,600 کروڑ روپے کی لاگت والا تیسرا مرحلہ، 12,200 کروڑ روپے کی لاگت والا تھانے انٹیگرل رنگ میٹرو اور تقریباً 3,000 کروڑ روپے کی لاگت والے پونے میٹرو ایکسٹینشن پروجیکٹ شامل ہیں۔ نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بنگلور میٹرو پروجیکٹ سے شہر میں ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تھانے انٹیگرل رنگ میٹرو پروجیکٹ ناوپارا، واگلی اسٹیٹ، ڈونگری پارا، ہیرا نندانی اسٹیٹ، کولشیٹ اور ساکت سمیت اہم علاقوں کو جوڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پونے میٹرو مرحلہ 1 پروجیکٹ سور گیٹ اور کٹراج کو آپس میں جوڑے گا۔
میٹرو کا پچھلے 10 برسوں میں بہت وستار ہوا۔ 10 سال پہلے جہاں صرف 5 شہروں میں میٹرو تھی، آج 21 سٹیز میں میٹرو ہے۔ آج اسی کرم میں 3 اور میٹرو پروجیکٹ آج کیبنیٹ نے اپروو کیے۔ 2 نئے ایئرپورٹ فیسلٹیز کا بھی آج اپروول ہوا۔
جناب ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے بہار کے بیہٹا اور مغربی بنگال کے باگڈوگرا میں نئے سول انکلیوز کی بھی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منظوری کے مطابق باگڈوگرا ایئرپورٹ پر نیا سول انکلیو تیار کیا جائے گا، جس پر تقریباً 1,549 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ بیہٹا میں نیا سول انکلیو بنایا جائے گا، جس پر 1,413 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ سرکار کسانوں کو سائنس کی معلومات فراہم کرنے کے لیے ریڈیو پر کسانوں کی بات ہے پروگرام شروع کرے گی۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ من کی بات پروگرام کی طرز پر ہوگا، جو آکاشوانی سے نشر کیا جائے گا۔ نئی دلی میں کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ پروگرام اگلے مہینے شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ زرعی سائنسداں اور محکمے کے حکام کسانوں کو معلومات فراہم کریں گے۔
جو انوسندھان ہو رہے ہیں ان کی جانکاری سیدھی ملے، اس کا فائدہ کیسے ملے، یہ بتائیں گے کہ کس چیز میں کیا کریں۔ اب اگر ربی کی بوائی کرنی ہے تو بوائی کی تیاری، اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس تیاری کے بعد اگر یہ خرید کی فصل، اس میں کوئی بیماری ہو تو اس کو لے کے الگ الگ طریقہ سے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے دیش نے کیا انوسندھان کیا، اس کی سیدھی جانکاری کسان تک پہنچانے کا کام کیا جائے گا۔
عوامی نشریاتی ادارے پرسار بھارتی اور سنسد ٹیلی ویژن کے درمیان آج پارلیمنٹ میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس مفاہمت نامے کا تبادلہ سنسد ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رجت کنہانی اور پرسار بھارتی کے سی او گورو دویدی کے علاوہ دونوں اداروں کے سینئر افسران کی موجودگی میں کیا گیا۔ مفاہمت نامے کے مقاصد کے بارے میں بات کرتے ہوئے प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मुकामनामे से मवाद और प्रोग्राम के बाहमी इश्तराक के अलावा प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफार्मों पर संसद टीवी के टेलीकास्ट और तरबियती सहूलियात के इस्तेमाल में आसानी होगी।
हम अपने जो भी कार्यक्रम है वो आपस में शेयर करेंगे, जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेटअप बॉक्स के हमारे ओटीटी के डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर संसद टीवी जो है प्रसारित होगा और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज हैं जो नेशनल अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है उसकी फैसिलिटीज का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में
इस मौके पर संसद टीवी के सीईओ रजित कुन्हानी ने कहा कि इस मुकामनामे से संसद टीवी और प्रसार भारती के दरमियान बाहमी तआवुन को मजीद फरोग हासिल होगा।
प्रसार भारती का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें संसद टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कोलैबोरेशन इन वेरियस अदर शेयरिंग ऑफ फीड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका मुख्य पोर्शन है।
खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने अर्जियाती मुशाहदा सयारशे ईओएस 08 और मुसाफिर सयारशे SRO डेमोसेट को आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से कामयाबी के साथ खला में भेजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो के साइंसदानों को आज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 के कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर जनाब मोदी ने कहा कि ये इंतहाई खुशी की बात है कि भारत के पास अब एक नई लॉन्च व्हीकल है। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के आला मुशीर मोहम्मद यूनुस ने अपने मुल्क में हिंदुओं और तमाम अकलियतों की सलामती तहफ्फुज और सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने एक जमहूरी मुस्तहकम पुरामन और तरक्की पसंद बांग्लादेश के लिए भारत की हिमायत का इरादा किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती इकदाम के जरिए बांग्लादेश के अवाम की मदद के लिए भारत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके इसराइली हम मनसब बिन्जामिन नेतन्याहू ने आज मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी के पास बिन्यामिन नेतन्याहू का फोन आया था। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने तमाम यरगवालियों की फौरी रिहाई और मुतासर लोगों के लिए लगातार इंसानी तआवुन की जरूरत के लिए भारत की बात को दोहराया। जनाब मोदी ने बातचीत और सफारतकारी के जरिए तनाजे के जल्द और पुरमन हल की बात कही। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं और भारत इसराइल कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। भारत कल वर्चुअल वसीले से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है पायदार मुस्तकबिल के लिए एक पाइख्तियार आलमी खित्ते जुनूब। नई दिल्ली में नामनिगारों को जानकारी फराहम करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि आलमी खित्ते जुनूब के तमाम ममालिक को इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इफ्तिताही इजलास सरबराह ममलकत और हुकूमत की सतह पर होगा और इसकी मेजबानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कोलकाता में एक ट्रेनी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ मेडिकल तंजीमों की तरफ से जारी एहतजाज की वजह से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तिब्बी खिदमात मुतासिर हुई हैं। बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज गैर मुअय्यना हड़ताल पर चले गए। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों की तंजीम और वहां के मेडिकल इंटर्न्स की तंजीम भी बढ़ते हुए एहतजाज में शामिल हो गई। भारतीय मेडिकल तंजीम IME ने कल सुबह 6 बजे से गैर इमरजेंसी खिदमात न देने का 24 घंटों के मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है। तंजीम ने एक बयान में कहा है कि जरूरी खिदमात जारी रहेंगी और कैजुअल्टी वार्ड्स खुले रहेंगे। IME ने कहा है कि OPD में कामकाज नहीं होगा और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएंगी। सेहत की मरकजी वजारत ने हिदायत दी है कि इदारे के सरबराह डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के केस में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के अंदर एक इदारा जाती FIR दर्ज कराने के जिम्मेदार होंगे। सेहत खिदमात के डायरेक्टर जनरल अतुल गोयल ने इस सिलसिले में मरकजी सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के सरबराहों को एक खत लिखा है। कोलकाता में एक डॉक्टर की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल के हालिया मामले और इस पर रेजिडेंट डॉक्टरों के एहतजाज के बाद ये हिदायत सामने आई है। 2022 के लिए 70वें कौमी फिल्म अवार्ड का आज नई दिल्ली में ऐलान किया गया। फिल्म कंटारा में बेहतरीन अदाकारी के लिए ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। तमिल फिल्म थिरु चित्रम बालम में बेहतरीन अदाकारी के लिए निथ्या मेनन, जबकि गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में शानदार कारकर्दगी के लिए मानसी पारेख को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
मलयालम फिल्म अट्टम को बेहतरीन फीचर फिल्म, जबकि फिल्म आईना को बेहतरीन नॉन फीचर फिल्म करार दिया गया। सूरज बड़जातिया को फिल्म ऊंचाई के लिए बेहतरीन हिदायतकार के इनाम के लिए चुना गया। फीचर फिल्म जुमरे में हिंदी के लिए फिल्म गुलमोहर को चुना गया। वहीं नॉन फीचर फिल्म जुमरे में हरियाणवी फिल्म फौजा को बेहतरीन नगमे के लिए इनाम का ऐलान किया गया। बेहतरीन मर्द गुलकार के लिए अरिजीत सिंह और बेहतरीन खातून गुलकारा के लिए बॉम्बे जयश्री को मुंतखब किया गया। दीगर फिल्मों जैसे पुनिगिन सेल्वन पार्ट वन, इमुथी पुथी, अपराजितो, ब्रह्मास्त्र, केजीएफ टू, दमन, कावेरी अंतर्धन और बागी दी गीक ने भी इनाम जीते। आनंद कुमार और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
पाकिस्तान में आज एम पॉक्स बीमारी के दो मजीद मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही मजमूई केसों की तादाद 3 हो गई है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब आलमी सेहत तंजीम WHO और बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के अफ्रीकी मराकज ने इसे एक आलमी सेहत इमरजेंसी करार दिया है। एम पॉक्स का पहला मुश्तबा मामला पाकिस्तान में एक 34 साल नौजवान ने सामने आया है, जो हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था। खैबर पख्तूनख्वा के दो नए मरीजों में एम पॉक्स की तस्दीक हुई है। तीनों मरीजों को अलग थलग रखा गया है। आलमी सेहत हुकाम ने कल स्वेडन में क्लेड 1B के इन्फेक्शन की तस्दीक की है। ये अफ्रीका के बाहर पहला मामला है। पाकिस्तान में आज खैबर पख्तूनख्वा रियासत में एक धमाके में दो पुलिस वालों समेत 4 अपराध जख्मी हो गए। यह हादसा रियासती राजधानी पेशावर में उस वक्त पेश आया जब एक पुलिस गाड़ी पर सड़क के किनारे रखे धमाका खेज मादे से हमला किया गया। किसी भी ग्रुप ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और इस हमले के जिम्मेदार लोगों की शनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। भारत ने शाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद भेजी है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के अपने अज़्म को मद्देनजर रखते हुए भारत ने कैंसर की दवाएं शाम भेजी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन 1400 किलोग्राम की ये खेप शाम की हुकूमत और उसके आवाम को इस बीमारी से निमटने में मदद फराहम करेगी। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पेरिस ओलंपिक 2024 में कामयाबी हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा और फौज के दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। नीरज चोपड़ा भारतीय फौज में एक सूबेदार हैं और उन्होंने नेजा फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया था। सूबेदार बोमन देवरा धीरज ने तीरंदाजी में 4th मकाम हासिल किया था। इस साल पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों में 84 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल अब तक का सबसे बड़ा दस्ता शामिल होगा। पैरालंपिक खेलों का इनेकार 28 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान होगा। 47 एथलीट्स इन खेलों में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दस्ते की रवानगी की तकरीब से खिताब करते हुए खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस टीम में 50 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS से मुस्तफीद हुए हैं। जनाब मांडविया ने कहा कि बहुत सारे खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स से भी आए हैं। फिच रेटिंग्स ने कल कहा कि बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त महीने में मुजाहरों के बाद अवामी लीग की हुकूमत के गिरने से सॉवरेंस क्रेडिट प्रोफाइल के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। फिच ने मई 2024 में बांग्लादेश की दर्जाबंदी को B+ मुस्तहकम से घटाकर -BB मनफी कर दिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 3 मरहलों में अगले महीने की 18 तारीख से शुरू होंगे। हरियाणा में एक ही मरहले में 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। मरकज ने 3 मेट्रो प्रोजेक्टों और 2 नए एयरपोर्ट सहूलियात की मंजूरी दी है। बांग्लादेश की उबूरी सरकार के आला मुशीर मोहम्मद यूनुस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की है। वजीर आजम ने जमहूरी पुरामन और तरक्की पसंद बांग्लादेश के लिए भारत की हिमायत का यादा किया है। कोलकाता में खातून डॉक्टर की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज की वजह से मुल्क भर के बहुत से शहरों में तिब्बी खदमात मुतासर हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने इदारों के सरबराहों को हिदायत दी है कि वो डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद के केस में 6 घंटे के अंदर इदारा जाती FIR दर्ज कराए। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।